خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں.
آج نہ صحیح, کل تو ہمیں جانا ہی ہے.
خدا آپ کو سلامت رکھے. اگر میں زندہ رہا تو ایسا نہیں ہونے دوں گا.
میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. کل رات تم اپنی ماں کے پاس نہیں گئے اور مجھے بھاگم بھاگ یہاں لائے. پھر کسی اور دن یا رات کو میری طبیعت خراب ہوگی اور قصہ ختم.
خدا نہ خواستہ. یقین کریں اگر میری ماں کی پرابلم نہ ہوتی تو میں زیادہ آپ کے ساتھ وقت گزارتا.
فرحاد یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا. میری اولادیں میرے پیسوں سے دنیا کے اس کونے میں جا کر آدمی بن گئے اور اب مہینے میں سال میں ایک بار بھی کم سے کم اپنا فرض سمجھتے ہوئے بھی اپنے باپ کو نہیں پوچھتے. اس حال میں تم سے کیوں بھیجا توقع رکھوں میں؟
اب میں کیا کہوں.
خدا کسی کو بے مروت اولاد نہ دے.
آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟
اگر میرے سفید بالوں کو غور سے دیکھو تو خود ہی سمجھ جاؤ گے.
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آدمی کا دل جوان ہونا چاہیے.
یہ میری جوانی ہی تو ہے جو مجھے وقت بے وقت اسپتال میں کھینچ لاتی ہے.
دیکھیے میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں, آپ تنہا ہیں. آپ کو تنہائی کے ساتھی کی ضرورت ہے جو آپ سے محبت کرے, آپ کا خیال رکھے.
جو لڑکی بھی میرے گھر میں آئے گی اسے دلہن کے جوڑے کے بجائے نرس کی یونیفارم پہن کر آنا پڑے گا.
ہاں کیوں نہیں, آپ کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈی جا سکتی جو نرس ہو, جو آپ کا خیال رکھے.
آپ رہنے دو فرحاد, لگتا ہے تم مجھے تھک گئے ہو اور پیچھا چھوڑانا چاہ رہے ہو.
نہیں سر, یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. یہ تو میری ڈیوٹی کا حصہ ہے, یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بیٹا, کیا کوئی بات ہے؟
کل رات آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آ رہے ہیں.
رشتہ؟ میں تم سے کہہ دیتا ہوں, اگر اس ناکارا لڑکے کی بیوی بننا چاہتی ہو تو میں بالکل راضی نہیں.
بابا جان یہ کوئی اور ہے.
وہ کون ہے, کیا کرتا ہے؟
بہت سے کام ہیں اس کے, امپورٹ ایکسپورٹ, یوروپ.
یوروپ؟ پھر تو جوان اور تیز ترا شخص ہوگا.
جوان؟ ہاں پرانا جوان.
پرانا جوان کیا مطلب؟ یعنی کتنے سال کا ہے؟
60 65.
60 65.
بابا جان سن کے تکلیف ہوئی؟
نہیں بہت ہی خوش ہوا نا.
بابا آپ کو واقعی خوش ہونا چاہیے, आपकी बेटी घर बार की होने जा रही है, वो भी कैसा घर बार?
कैसा घर बार? क्या तुमने नहीं कहा वो मेरा हमसिन है?
देखिए बाबा जान, लोग अच्छे बुरे तो होते ही हैं, लेकिन ये हिसाम साहब वाकई बहुत अच्छे आदमी।
खुदा जाने मैंने कहा तुम्हारी तरबियत में गलती की थी।
कहीं भी नहीं, सिर्फ ये था कि जितनी अपने नसीहतें की उतना जेब खर्च नहीं दिया।
बहरहाल उसे घर में दाखिल होने का हक नहीं है।
कुछ अपने बारे में भी तो बताओ।
मैं एक गरीब घराने की आखिरी औलाद हूं।
तुम्हारी माँ राजी हैं?
खुदा आपके मरहूमिन की मगफिरत करे, वो इस दुनिया में नहीं है।
माफ करना, मुझे पता नहीं था। और तुम्हारे वालिद?
वो मुखालिफ हैं, इसीलिए आपको अपने घर रिश्ते के लिए नहीं बुलाया।
उन्हें हक है, मैं इस नौसाल में अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी अपनी जवान लड़की को इजाजत न देता कि एक ऐसे शख्स से।
तो आप भी मुखालिफ हैं।
माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूं। सर ऐसा करना चाहते हैं वो, आप लोगों की हक तलफी नहीं करना चाहते।
क्या ये सही कह रहे हैं?
हाँ।
आपकी उम्र ज्यादा है, ठीक, लेकिन आपको अपनी हैसियत के बारे में भी सोचना चाहिए। आप बहुत तजुर्बाकार हैं, मुआशरे में आपकी इज्जत है।
लेकिन सेन का फर्क यानी दिलचस्पियों में एक दूसरे के मुखालिफ।
मेरे माँ बाप तकरीबन हमसिन थे, लेकिन जब तक मेरी माँ जिंदा रही एक दिन भी खुश ना रही, ना ये उनकी बात समझती थी ना वो इनकी।
तुम जरा इस पर भी गौर करो कि हमारी मुश्तरका जिंदगी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहती।
उम्र तो खुदा के हाथ में है, अब देखिए ना घंटे भर बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाए और खत्म। मैं समझती हूँ ये जिंदगी की गहराई है जो अहम है। इस बात की कोई अहमियत नहीं कि हम 60 साल तक एक साथ रहें या 6 साल तक, अहम ये है कि हमारी यादें कितनी दिलचस्प हों।
माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, इस तरह की बातें मुनासिब नहीं है।
तुम्हें मेहर कितना चाहिए?
मेरी जिंदगी का जामिन अगर सचमुच जिंदा दिल हो तो उसकी मेहर और मोहब्बत ही मेरे लिए मेहर है। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय फूल की एक शाख के।
और तुम्हारे बाप की रजामंदी, उसका क्या होगा?
मेरे बाबा जान मेरे हर फैसले की पहले मुखालफत करते हैं फिर मान जाते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उन्हें आखिरकार मना ही लूंगी।
ठीक, तो फिर ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए।
शुक्रिया।
ले।
पसंद कर लिया?
जी हाँ, मेरा ख्याल है यही ठीक है।
एक मिनट इधर आओ।
ठीक है, आप वालिद हैं और आपकी भी आरजू है, लेकिन अपनी बेटी को इंतखाब का मौका दीजिए। अभी हाजिर होता हूँ।
क्या यह हो सकता है कि शादी बगैर किसी धूमधाम के हो, कोई शोर शराबा ना हो? ایک سادہ سا عقد میری خوشی اور ان سفید بالوں کے لیے.
دلہن کافی شرمیلی ہے. تیسری بار دلہن سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا عقد دائمی دلہا کے ساتھ ایک پھول کی شاخ کے عوض بطور حق مہر پر دوں؟ آیا آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہیں؟
اپنے والد کی اجازت سے جی ہاں.
کچھ نہیں، بس ذرا سر درد ہے.
یہ لو، میں جب یہ گولی کھاتا ہوں سر درد غائب ہو جاتا ہے.
شکریہ.
پھر بہن خواب دیکھا؟ کسی ماہر نفسیات کے پاس کیوں نہیں جاتے؟
لائٹ بجھا دو، اس کی روشنی مجھے بری لگ رہی ہے. ارے بھائی، 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، صرف دل پر ہلکا سا بوجھ ہے.
بیوی شوہر کی محرم ہوتی ہے، اگر اپنی بات مجھے نہیں بتاؤ گے تو پھر کسے بتاؤ گے؟
کیا میں پھر خواب میں کچھ بڑبڑا رہا تھا؟
میں تو پانی پینے گئی تھی، یہاں نہیں تھی. اگر تم نے کچھ کہا بھی تو میں نے نہیں سنا. مطمئن رہو.
میں ہر رات خود کو ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھتا ہوں، پھر اچانک ایک ٹرک کہیں سے میرے سامنے آ جاتا ہے جس کا ڈرائیور سو رہا ہے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں خواب سچ نہ ہو جائے.
اطمینان رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا.
تمہیں کہاں سے اس قدر یقین ہے؟
اس لیے کہ فرحاد ہمیشہ ڈرائیونگ کرتا ہے، تم نہیں.
دس سال پہلے میری بیوی مر گئی. اس سے 10 سال پہلے میری زندگی ختم ہو چکی تھی. یہ نہ پوچھو کیوں.
نہیں، میں نہیں پوچھوں گی. اس کی وجہ یہ کہ ہم سب انسانوں کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں چھپی رہیں.
ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، کوئی آیا اور تمہارے کان میں کچھ پھونک دے اور تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ.
بالکل اطمینان رکھو، میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. فقط
تم ہوتی تو دیکھتی.
مجھے بھی یقین نہیں آ رہا. بس اب چپ ہو جاؤ، پھندا لگ جائے گا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معاف کیجیے گا، اصل میں آپ باہر نہیں آئے تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو.
نہیں بیٹا، اچھا کیا آ گئے. گھر کے اندر اگر یہ محترم خاتون ہو تو بس رات دن یوں ہی بیٹھا رہوں اور یوں ہی بیٹھا بیٹھا وٹامن اور پھلوں کا شربت پیتا رہوں، کام دھام بند.
آپ کی نائتوں کا بہت شکریہ.
ارے بھائی، مذاق کر رہا تھا. فرحاد، अच्छी बीवी भी नेमत है। अलबत्ता अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी शादी के सिलसिले में भी कुछ करना पड़ेगा।
वालिद मरहूम कहते थे कि औरतों पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये वैसी नहीं होती जैसी नजर आती हैं।
आपके वालिद ने मर्दों के बारे में कुछ नहीं फरमाया, मसलन ये कि पैसों की खातिर हर चीज नीलाम कर देते हैं।
चलो मियाँ, चलो मियाँ, कबल इसके कि आप दोनों में बाकायदा जंग शुरू हो जाए।
चले आए, चले। खुदा हाफिज़।
क्या हुआ तुम्हें, परेशान क्यों हो?
कुछ नहीं। कल रात आपके साहबजादे का फोन आया था।
फरजाद का? तुम्हारे पास किस लिए, और तुम्हारा नंबर उसे कहां से मिला?
मैं क्या जानूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि दफ्तर के किसी शख्स ने चापलूसी में उसे आपकी शादी की सारी खबरें पहुंचा दी हैं।
अच्छा,
माफ कीजिएगा, बेअदबी होगी, लेकिन जो कुछ उसके मुंह में आया उसने मुझे कहा।
बदतमीज है, लेकिन तुमसे क्या मतलब?
मैं क्या बताऊं, शायद इसलिए कि मेरी माँ ने नाहिद साहिबा को आपसे मुतारिफ कराया था। उसको सारी शिकायत ये थी कि आपने पहले उससे इजाजत क्यों ना ली।
मैं खुदा मैं हैरान हूँ, कोई चीज आसमान से जमीन पर गिरती है, जमीन से आसमान पर जाती है? माँ बाप अपने बच्चों से इजाजत लें या बच्चे माँ बाप से इजाजत लें, अजीब है।
सर सर अपने दिल का ख्याल करें।
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।
माफी चाहता हूँ, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे?
कहो।
असल में मैं ये जानना चाहता था कि ये नाही साहिबा ने क्या सचमुच आपसे कुछ नहीं मांगा, दौलत, मेहर की रकम?
कुछ नहीं।
फिर तो वाकई मुबारक हो, मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं, लेकिन जानते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं आपके साहबजादे के बारे में सोच रहा हूँ। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो फिर माफ कीजिएगा, कुछ नहीं।
घबराओ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता।
अजीब बात है, पिछली बार की नस्बत तुम्हारी हालत काफी बेहतर है।
तो मैंने तो कहा था कोई खास बीमारी नहीं है।
तुमसे वो बात इसलिए कही थी कि तुम आशा पर मुसल्लत रहो, लेकिन वो फरहाद को बता दिया था कि तुम्हारी हालत अच्छी नहीं।
देखिए, मैं छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आपकी हालत ठीक नहीं थी, सोचा और न खराब हो जाए।
बहुत अच्छा किया, इस तरह कम से कम इनकी तबीयत बेहतर हो गई। सिर्फ अब मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अजीब बात है, उस दफा मेरी दवाओं ने भी असर नहीं किया था।
डॉक्टर साहब, मैं फरहाद और उसकी माँ का ममनून हूँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे एक कीमती गौहर से आशना कराया है।
कीमती गौहर? बहुत बेवनवत निकले, मुझे भी नहीं बुलाया।
डॉक्टर साहब, मैं इस लड़की की जितनी भी तारीफ करूं कम है, बस परवानावार मुझ पर फिदा होती रहती है। क्या तुम यकीन करोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल परवाने की तरह। तुम्हारी जान की कसम।
बिल्कुल समझ गया।
सच कह रहा हूँ। हाँ।
बिल्कुल परवाने की तरह।
आज मैंने एक दस्तरखान खरीदा है ताकि कभी कभी फर्श पर बैठकर खाना खाएं।
नाहिद, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक भाई ने भाई को पैसों के लिए कत्ल कर दिया।
सुबह से बैठकर बस जरायम के सफ़े को पढ़ते हो, फिर कहते हो रात में डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? आ जाओ खाना खा लो।
बस रो चश्म। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या दस्तरखान है। पता है कितने दिनों से फर्श पर बैठकर खाना नहीं खाया था। अरे भाई गोश्त का शोरबा भी रख दिया होता।
हिसाम साहब, गोश्त का शोरबा तुम्हारे लिए मुजिर है
तो अपने ही लिए रख लिया होता।
और उस वक्त आप ललचाई हुई नजरों से देखते और कुछ उड़ा भी लेते। कोई खास बात है क्या?
कल तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है?
क्यों नहीं, अपने बाबा के यहाँ।
ना जाओ,
बाबा इस शादी के मुखालिफ थे, दुरुस्त। आप उन्हें अच्छे नहीं लगते, ये भी ठीक, लेकिन बहरहाल वो बाप है और उनका एहतराम वाजिब।
तुम क्या कह रही हो? मैं इसलिए थोड़ी तुम्हें रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ।
तू परसों चले जाएंगे?
देर हो जाएगी।
कहाँ?
नहीं बता सकता, 20 सवालों का मुकाबला है बेगम साहिबा।
अच्छा अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। मुझे वाकई तुमसे कुछ नहीं चाहिए, खाली हाथ आई थी जहेज के बगैर, यूं ही खाली हाथ रहना चाहती हूँ।
तुम्हारे जैसे लोग इस दौर में, इस जमाने में बहुत कम मिलेंगे।
कोई आदमी इतने सारे पैसे किसी को एक दफा नहीं देता।
अव्वल तो ये कि तुम कोई और नहीं हो, मेरी बीवी हो। दो ये कि सब कुछ तुम्हारे शाया निशान नहीं है।
मेरी और तुम्हारी कोई बात ही नहीं, ये घर जो तुम्हारे नाम है तो इसी तरह ठीक है, यूं ही मैं बड़े आराम से हूँ।
तुम्हें ये खबर तो है ही नहीं कि दफ्तर भी तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ।
एक बात कहना चाहती हूँ।
देर हो चुकी है, पहले ऊपर चलो, वापसी में तुम्हारा जो जी चाहेगा कह लेना।
नहीं, अभी अभी तुमसे कहना चाहती हूँ, कबल इसके कि अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करो। मैंने जब तुम्हारे लिए हाँ की तो मेरी नजर तुम्हारी दौलत पर थी, अलबत्ता वैसी नजर नहीं जो तुम सोच रहे हो। मैं ये चाहती थी कि जब बीमार पड़ूं तो दवा दारू की फिक्र ना रहे, जब कहीं जाना चाहूं तो एक छोटा सा जेवर खरीदने के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाऊं। दिल में था कि कभी भी मेरी निगाहें जर पर दुकानों के शोकेसों पर ना हो। इसीलिए जब फरहाद ने आपके मुतालिक बताया तो मैंने उससे नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है, कैसा है, उसकी उम्र क्या है, सिर्फ पूछा। तो मैंने आपकी दौलत के मुतालिक ही पूछा।
जब इंसान खाली हाथ होता है तो कोई भी उसकी बदबख्ती में शरीक होने की जरूरत नहीं करता, और जब पैसा होता है तो दूसरी तरह की तन्हाई होती है, क्योंकि लोग तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे गिर्द फिरते हैं, न कि तुम्हारे लिए।
आप मुझसे कुछ ना भी कहें, अपने चेहरे से कुछ जाहिर भी ना करें, ये तो दुनिया है, कहने वाले तो कहेंगे ही।
अब चलते हैं बेगम साहिबा, देर हो गई।
उजाला तो होने दे, तो फिर जाते।
डरता हूँ कहीं ट्रैफिक ज्यादा ना हो जाए, आधे घंटे में सूरज निकल आएगा।
ठीक है, तुम्हारा ब्रश और तौलिया मैंने रख दिया है।
शुक्रिया, लेकिन काश तुम भी साथ चलते।
सच्ची बात यह है कि मुझे मेडिकल रिपोर्ट लेनी है।
मेडिकल रिपोर्ट? क्या कुछ तबीयत खराब है?
अरे नहीं भाई।
अम्मा हल ना कराओ, तुमको मालूम है मेरा दिल कमजोर है और मुझे हैजानी बातों से परहेज करना चाहिए।
तुम बाप बनने जा रहे हो।
हाँ?
अलबत्ता मुझे 100% यकीन नहीं है, ये कल पता चलेगा।
क्या ये मुमकिन है? मैं इस बुढ़ापे में?
इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है।
तुम यको तनहा इस दरिंदों के शहर में कैसे जिंदगी गुजारोगी? और अब लीजिए दो हो गए।
परेशान ना हो, खुदा तो है ना।
तुम्हारे ख्याल में किसी और चीज की अलामत तो नहीं?
किस चीज की?
ये सारे डरावने ख्वाब अब खत्म होने वाले हैं।
ऐसा ही है।
ये फरहाद भी घंटे बजाए चला जा रहा है। तोहफा क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
कुछ नहीं, तुम्हारी सलामती के साथ वापसी मेरी सौगात है। अच्छा अपना ख्याल रखना, दवाई वक्त पर खाना और पहुंचते ही फोन करना, अच्छे बच्चों की तरह।
सर आंखों पर। अब मैं चला।
लेकिन ये तो कोई और जगह है।
जी नहीं, नीचे उतरे।
मुझे पता था कुछ और चक्कर है।
तो फिर क्यों आए?
इसलिए कि अब मैं इस जिंदगी से आजीज आ चुका हूं, थक चुका हूं डरावने ख्वाबों से। किसी कहानी का आगाज अच्छा ना हो तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है? मेरे पार्टनर ने जब अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया तो मैंने एक फर्जी एक्सीडेंट में उसे उस दुनिया में भेज दिया।
मेरे कान पक चुके हैं, हजार बार सुन चुका हूं।
नहीं, अब तक नहीं सुना। अगर सुना होता तो तुम्हें इबरत हासिल होती। अच्छा, माना कि किसी को पता ना चलेगा तो भी आखिर में तुम भी मेरे जैसे एक आदमी बन जाओगे जो 30 साल से मुंतजिर था के तुम्हारे जैसा कोई आए और उसे उसके डरावने ख्वाबों से नजात दिला दे।
देखो, मुझे ज्यादा नसीहत मत करो। जानते हो आदमी कौन है जिसके बारे में तुम आजकल ख्वाब देख रहे थे?
कौन है?
नीचे उतरो।
Thank you.
सुबह से तबीयत परेशान है, उनके मोबाइल भी बंद है, रश तक का रास्ता सिर्फ 4-5 घंटों का ही तो है। अजीब बात है, अब मुझे जाना चाहिए, अब यहाँ ठहरना मुश्किल हो रहा है।
परेशान ना हो बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। आए, आए।
कुछ पता है सुबह से अब तक तुम कहाँ थे? दिल में हजारों ख्याल आ रहे थे, तुम्हारा फोन भी बंद था। हिसाम कहाँ है?
हिसाम मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। वो मर गया।
तुम कैसे सही सलामत हो?
क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था।
मैंने खुद देखा था कि सुबह तुम उसे लेने आए।
हाँ, आया था लेकिन साथ नहीं गया, क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब थी।
झूठ बोल रहे हो।
क्या बात है, लगता है बड़ा मजा आ रहा था उसके साथ, उसका गम मना रही हो। मर गया तो मर गया, जाओ अपना सामान लेके आओ।
बहुत ही कमीने आदमी,
जाओ अपना सामान लेके आओ।
कमीने आदमी।
उस रात जो कुछ हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस पर। 2-3 हफ्ते गुजर गए लेकिन मुझे लग रहा है जैसे 2-3 साल गुजर गए।
तुम चाहते क्या हो?
तुम घबराई हुई लग रही हो, डरो नहीं, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है।
तुम्हारा वहम है, किसी भी दिन पुलिस तुम्हारे सर पे पहुंच जाएगी।
ऐसी बातें मत करो, बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया है मैंने। पूछो तो क्या प्लान है? हुसाम की गाड़ी खराब हो जाती है, वो गाड़ी से उतरकर मैकेनिक के आने का इंतजार कर रहा होता है, तभी एक अनाड़ी ड्राइवर आता है और उसे टक्कर मार देता है।
बड़े कमीने हो, मेरे सामने खड़े होकर बता रहे हो कि मेरे शौहर को कैसे मारा।
शौहर? तुम्हें यकीन आ गया और ये भूल गई कि हमने आपस में कुछ तय किया था?
पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे इस गंदे दिमाग में कौन सा प्लान है?
तुम्हें सारी बातें मालूम थी सिवाय इस आखिरी चाल के।
आखिरी चाल, तुझे होश नहीं है, तुम कातिल बन चुके हो।
हाँ मैं कातिल हूँ, लेकिन तुमसे क्या मतलब? तुम तो मेरे साथ कब्र में नहीं जाओगी, लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदार तुम भी हो इसकी। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी मोहब्बत करने लगोगी उससे।
तुम्हें तो कहा था उससे इतनी मोहब्बत करो कि हर चीज तुम्हारे नाम कर दे, कहा था कि नहीं? तुम्हें तो कहा था ऐसा रोल अदा करना कि उसे यकीन आ जाए।
हाँ कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम खुद ही बेवकूफ बन जाओ।
उसे ताबत तो जिंदा नहीं रहना था। 6 महीने, 1 साल भी सब्र किया होता।
बहुत मुश्किल था मेरे लिए, तुम दोनों को एक साथ देखना बहुत मुश्किल था।
हमने उसके साथ बहुत बुरा किया, वो हर चीज मेरे नाम कर गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये एक खेल है।
क्या बात है, उसके इस अंजाम पर बहुत कुड़ रही हो। जानती हो उसे अपने किए का बदला मिला है। मैंने उसे वैसे ही मारा जैसे उसने अपने दोस्त को मारा था।
तुम्हें तो ये सब मालूम है ना? अब डरो उस दिन से जब मुझे और तुम्हें अपने किए का फल मिले। डरो।
मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब भी तैयार हूं हर चीज को भूल कर सिर्फ तुम्हें हासिल करूं।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने बाप के कातिल को बाबा कहे।
मुझे मालूम है कि तुम घर पर हो, फिर भी ये पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अगर अब भी तुम्हारे लिए अहम है कि तुम्हारे बाप को इस शादी की असल वजह का पता ना चले, तो कल रात 10 बजे खामोशी से तमाम कागजात के साथ मेरे बताए हुए पते पर आओ। तो तुम्हारे लिए अहम है कि तुम्हारे बाप को वजह का पता ना चले, जब ही तो यहां आ गई हो। सब कुछ लाई हो? ये चारों तरफ बिखरी कारें देख रही हो? एक दिन इन सब के मालिक भी थे, शान से रहते थे मेरी तरह। याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी पूरी जिंदगी हो?
उस वक्त की बात नहीं करो, उस वक्त तुम कातिल नहीं थे। मेरे शनाख्ती कार्ड में भी किसी मर्द का नाम नहीं था। उस वक्त जब तुमने कहा था कि इसाम की बीवी बन जाओ ताकि हमारे वारे न्यारे हो जाएं।
हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो, ये सब मेरी प्लानिंग थी, लेकिन उस पर अमल दरामद तुमने किया और फिर अलग हट रही हो।
हाँ लेकिन मैंने किसी की जान नहीं ली।
मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा, इसीलिए सारे पैसे मुझे दे दो, मैं पूरा गुनाह अपने सर ले लूंगा।
हिसाम हमेशा कहता था जिस कहानी की इब्तिदा अच्छी ना हो उसकी इंतहा भी अच्छी नहीं।
बड़ी उम्दा बात कही है, जाहिर है तजुर्बेकार आदमी थे, खुदा रहमत करे। हाँ तो मैं पूछ रहा था सारे कागजात लाई हो?
आधे।
ये गलत काम है, आधा आधा हिस्सा उस वक्त लगता जब हम अपनी बात पर अमल करते हैं, और मैं कातिल भी न हुआ होता।
अब तो बस यही है।
Hit.